हरे कृष्णा। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय दो श्लोक क्रमांक तीन। अध्याय दो गीता का सार। क्लैब्यमास्मगमः पार्था नैतत्वी उपपद्यते शूद्रम हृदय दौर बल्यम त्यक्तो तिष्ठ परंतप। हे प्रथापुत्र, इस हीन नपुंसकता को प्राप्त मत हो, यह तुम्हें शोभा नहीं देती। हे शत्रु के दमन करता, हृदय की शूद्र दुर्बलता को त्याग कर युद्ध के लिए खड़े हो। तात्पर्य, अर्जुन को प्रथा पुत्र के रूप में संबोधित किया गया है। प्रथा कृष्ण के पिता वसुदेव की बहन थी, अतः कृष्ण के साथ अर्जुन का रक्त संबंध था। यदि क्षत्रिय पुत्र लड़ने से मना करता है तो वह नाम का क्षत्रिय है, और यदि ब्राह्मण पुत्र अपवित्र कार्य करता है तो वह नाम का ब्राह्मण है। ऐसे क्षत्रिय तथा ब्राह्मण अपने पिता के अयोग्य पुत्र होते हैं, अतः कृष्ण यह नहीं चाहते थे कि अर्जुन अयोग्य क्षत्रिय पुत्र कहलाए। अर्जुन कृष्ण का घनिष्ठतम मित्र था और कृष्ण प्रत्यक्ष रूप से उसके रथ का संचालन कर रहे थे, किंतु इन सब गुणों के होते हुए भी यदि अर्जुन युद्ध भूमि को छोड़ता है तो वह अत्यंत निंदनीय कार्य करेगा। अतः कृष्ण ने कहा कि ऐसी प्रवृत्ति अर्जुन के व्यक्तित्व को शोभा नहीं देती। अर्जुन यह तर्क कर सकता था कि वह परम पूज्य भीष्म तथा स्वजनों के प्रति उदार दृष्टिकोण के कारण युद्ध भूमि छोड़ रहा है, किंतु कृष्ण ऐसी उदारता को केवल हृदय दौर्बल्य मानते हैं। ऐसी झूठी उदारता का अनुमोदन एक भी शास्त्र नहीं करता। अतः अर्जुन जैसे व्यक्ति को कृष्ण के प्रत्यक्ष निर्देशन में ऐसी उदारता या तथाकथित अहिंसा का परित्याग कर देना चाहिए। कोई भी व्यक्ति जगत में अपने कर्तव्यों के कारण ही उस पदवी को प्राप्त करने का अधिकारी होता है। तो ये इंपॉर्टेंट बात है कि व्यक्ति को समझ में आना चाहिए कि जब किसी व्यक्ति को क्षत्रिय कहा जा रहा है तो क्षत्रिय के कार्य की करने पड़ेंगे। जैसे मान लीजिए इस भारत की सेना में एनएसजी कमांडोज हैं। अब एनएसजी कमांडो अगर सब कहे कि जब मान लीजिए कहीं पे कोई आतंकवादी ने हमला किया तो क्या हम उनको क्या मारें, ये भी तो इंसान हैं, ये भी तो हमारे भाई बंधु जैसे हैं। पूरा वसु जो पृथ्वी है वो वसुदेव कुटुंबकम है, पूरा वसु पृथ्वी ही वसुदेव की कुटुंब है, अब इनको हमें समान रूप से देखना चाहिए। नहीं, ठीक है आप उनको आत्मा के रूप में देखिए, लेकिन इस समय वो अज्ञान में है और लोगों को कष्ट पहुँचा रहे हैं, तो उनको दंड देना एक कमांडो का या एक सरकारी सैनिक का कर्तव्य है। उसी प्रकार से ये पूजनीय थे, गुरुवर सब पूजनीय थे, लेकिन क्योंकि वह धर्म का साथ ले रहे थे तो भगवान ही शिक्षा देना चाहते थे कि कोई व्यक्ति कितना भी महान हो, अगर वह अधर्म का साथ देगा तो उसको दंड मिलना ही चाहिए। तो यही बात वो अर्जुन के माध्यम से सिखाना चाह रहे थे और अर्जुन इस बात को समझ नहीं पा रहे थे, एटलीस्ट इस समय तक। और यहाँ शब्द आ रहा है परंतप, यानी तुम शत्रुओं का दमन करने वाले हो। कितनी बार तुमने लोगों को जो एक निवाट कवच नाम के असुर थे, तो इंद्र की तरफ से अर्जुन ने युद्ध किया था और इन सबको पराजित किया था। तो भगवान कह रहे हैं परंतप, मतलब तुम्हारे अंदर शक्ति है कि तुम शत्रुओं का दमन कर सकते हो, तो तुमको ऐसी नपुंसकता को प्राप्त नहीं होना चाहिए। अरे भाई, जैसे उत्तम था, उत्तम नाम का था व्यक्ति, जो विराट का राजकुमार था, उसके पास शक्ति नहीं थी, वो बेचारा भागे युद्ध में, तो समझ में आता है। लेकिन अर्जुन जैसा व्यक्ति जो शक्तिशाली हैं, क्षत्रिय हैं, पूरे विश्वविख्यात क्षत्रिय हैं, उनके लिए इस प्रकार से भाग जाना वापस ये सही नहीं है। उसी प्रकार से ब्राह्मण का व्यक्ति कहे कि अब मैं स्नान नहीं करूँगा, ठंड आ रही है, गर्मी है, ठंड है, ऐसे करके अगर बोले और ब्राह्मणोचित कार्य ना करे तो केवल नाम का ब्राह्मण है, इसे कहते हैं ब्रह्म बंधु। तो व्यक्ति को केवल अपनी पदवी को स्वीकार करके उसकी सुख सुविधाओं को ही भोगने का प्रयास नहीं करना चाहिए, बल्कि साथ साथ उन कर्तव्यों का पालन भी करना चाहिए जो उससे अपेक्षित है। तो भगवान यहाँ अपने भक्त को, अर्जुन को, एक जगह बैठकर ध्यान करने के लिए नहीं बोल रहे हैं, बल्कि वो बोल रहे हैं कि कृष्ण भावना भावित होकर के वो कार्य करे। और कह रहे हैं त्यक्तो उत्तिष्ठ परंतप, हृदय के दौर्बल्य को, शूद्र हृदय के दौर्बल्य, अरे उनको कैसे मारूंगा, बड़ा कठिन है, बड़ी परेशानी है, इसको त्यागो और उठ करके युद्ध करने के लिए तैयार हो जाओ। तो अर्जुन आर्ग्यूमेंट करते हैं। अर्जुन उवाच, कथम भीष्ममहं संखे द्रोणम च मधुसूदन इषुभिः प्रतियोस्यामि पूजार्हा वरिसूदन। अर्जुन ने कहा, हे शत्रुहंता, हे मधुसूदन, मैं युद्ध भूमि में किस तरह भीष्म तथा द्रोण जैसे पूजनीय व्यक्तियों पर उलटकर बाण चलाऊंगा? भीष्म पितामह तथा द्रोणाचार्य जैसे सम्मानीय व्यक्ति सदैव पूजनीय हैं, यदि वे आक्रमण भी करें तो उन पर उलटकर आक्रमण नहीं करना चाहिए। यह समान शिष्टाचार है कि गुरुजनों से वाग युद्ध भी ना किया जाए, मतलब शब्द बाण भी ना चलाया जाए, उल्टा जवाब नहीं देना चाहिए गुरुजनों को। यहाँ तक कि यदि कभी वे रुक्ष व्यवहार करें तो भी उनके साथ रुक्ष व्यवहार ना किया जाए, तो फिर भला अर्जुन उन पर बाण कैसे छोड़ सकता था? क्या कृष्ण कभी अपने पितामह नाना उग्रसेन या अपने आचार्य सांदीपनि मुनि पर हाथ चला सकते थे? अर्जुन ने कृष्ण के समक्ष यही कुछ तर्क प्रस्तुत किए। एक इंटरेस्टिंग बात है कि अर्जुन ने इस समय तक अभी भगवान को अपने गुरु के रूप में स्वीकार नहीं किया, बल्कि मित्र के रूप में स्वीकार कर रहे हैं, और इससे उनकी प्रॉब्लम सॉल्व हो नहीं रही है। यानी कोई व्यक्ति, अगर व्यक्ति सोचे कि मैं भगवान के समान ही बुद्धि रखता हूँ, तो फिर भगवान से या गुरुजनों से वो ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकता। दूसरा शब्द यहाँ जो महत्वपूर्ण आ रहे हैं वह है मधुसूदन और अरिसूदन। अरिसूदन का मतलब होता है शत्रुओं के संहारक, और मधुसूदन मतलब भगवान ने मधु नाम के दैत्य को मारा था। तो अर्जुन का कहने का अर्थ ये है कि आपका नाम मधुसूदन है, आपने एक दैत्य को मारा था, आपका नाम अरिसूदन है क्योंकि आप शत्रुओं को संहार करते हो, लेकिन कभी ऐसा हुआ है कि क्या आपको स्वयं को किसी रिश्तेदार को मारना पड़ा हो? अरे कंस की बात छोड़ दीजिए, लेकिन अदरवाइज अपने माता पिता को मारना पड़ा हो या नाना जी को मारना पड़ा हो, ऐसा हुआ है कभी जिन्होंने आपके प्रति प्रेम किया? कंस ने तो आपको मारने का प्रयास किया, लेकिन बाकी जैसे यहाँ पे दुर्योधन से युद्ध होता तो अर्जुन कह सकते थे चलो कोई से युद्ध कर लेते हैं, कोई बात नहीं है। लेकिन द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, भीष्म पितामह, ये तो उनको बहुत प्रेम करते थे, बल्कि अर्जुन भीष्म पितामह को अपना पिता ही मानते थे और बोलते थे कि आप पिताजी हैं, पिताजी तो बोलते नहीं मैं तुम्हारा पिता नहीं हूँ, मैं तुम्हारा पितामह हूँ, ऐसे करके इतना वो प्रेम करते थे। तो फिर ऐसे व्यक्ति पर मैं बाण कैसे चला सकता हूँ? देखिए, अगर हम अपनी स्थिति को पे जायजा लें तो वाकई अर्जुन के लिए बहुत मुश्किल कार्य था, लेकिन फिर भी भगवान उनसे उनका कर्तव्य कराना चाहते थे। तो कोई यहाँ पे अर्जुन तर्क दे रहे हैं कि मैं कैसे उनको मार सकता हूँ। भगवान भी बोलते हैं कि दशम स्कंद में अपने ही यदुवंशों को बोलते हैं, कहते हैं अगर ब्राह्मण आकर के आप पर कोई चिल्लाए, गुस्सा करे, तो आपको मुस्कुराते रहना चाहिए, आपको उन पे प्रत्युत्तर में नहीं कुछ भी बोलना नहीं चाहिए। तो देखिए, द्रोणाचार्य ब्राह्मण थे, कृपाचार्य ब्राह्मण थे, अश्वत्थामा भी ब्राह्मण थे, तो अर्जुन का आर्गुमेंट बहुत स्ट्रांग है कि ब्राह्मण अगर हम पर बाण चला भी रहे हैं तो हमें उनका प्रत्युत्तर क्यों करें, हमें नहीं करना चाहिए। गुरुन हत्वा हि महानुभावान श्रेयो भोक्तुम भैक्षमपि हलोके हत्वार्थ कामांस्तु गुरु निहैव भुंजीय भोगान रुधिर प्रदिग्धान। ऐसे महापुरुषों को जो मेरे गुरु हैं उन्हें मारकर जीने की अपेक्षा इस संसार में भीख मांगकर खाना अच्छा है। तो काफ़ी मॉरल शिक्षाएं दे रहे हैं और काफ़ी अच्छी भी लग रही हैं सुनने के लिए, लेकिन भगवान इसको स्वीकार नहीं करते। भले ही वे सांसारिक लाभ के इच्छुक हों, किंतु हैं तो गुरुजन ही। यदि उनका वध होता है तो हमारे द्वारा भोग्य प्रत्येक वस्तु उनके रक्त से सनी होगी। शास्त्रों के अनुसार ऐसा गुरु जो निंद कर्म में रत हो या और जो विवेक शून्य हो त्याज्य है। दुर्योधन से आर्थिक सहायता लेने के कारण भीष्म तथा द्रोण उसका पक्ष लेने के लिए बाध्य थे, यद्यपि केवल आर्थिक लाभ से ऐसा करना उनके लिए उचित न था। ऐसी दशा में वे आचार्यों का सम्मान खो बैठे थे, किंतु अर्जुन सोचता है कि इतने पर भी वे उसके गुरुजन हैं, अतः उनका वध करके भौतिक लाभों का भोग करने का अर्थ है होगा रक्त से सने अवशेषों का भोग। इसके संबंध में भीष्म पितामह की उक्ति है कि मेरा अनुभव है कि इस जगत में धन किसी के सेवक नहीं है, बल्कि सभी लोग धन के सेवक हैं, और इसी धन के कारण मैं कौरवों की सेवा में लग गया और इस कारण से मैं अब अधर्म की तरफ हूँ। तो व्यक्ति को गुरु का पद अगर वो स्वीकार कर रहे हैं तो उनका कर्तव्य है कि वो धर्म पे चलें, और वह धर्म पे मार्ग पे चलते हैं या धर्म की शिक्षा देते हैं, हितोपदेश नहीं देते हैं, तो फिर कोई आवश्यकता नहीं है कि हमें उनको गुरु के रूप में स्वीकार करना चाहिए। तो इसलिए, लेकिन अर्जुन का हृदय बहुत कोमल है, बहुत ही कृतज्ञ हैं, वो उनके किए गए उपकारों को नहीं भूल रहे, इस कारण से वो अभी भी उनको गुरु के रूप में ही स्वीकार कर रहे हैं, भले ही वो गुरु जो हैं वो उनका वध करना चाहते हैं और राज्य के लोलुप हैं, ये कह सकते हैं दुर्योधन के पीछे साथ दे रहे हैं जो कि राज्य का लोलुप है, फिर भी वो उनको गुरु गुरु के रूप में ही स्वीकार कर रहे हैं। तो ये अर्जुन की उदारता है। और वो कह रहे हैं अगर उनको मार देंगे और भले हम जीत भी गए तो भी जो भी हम प्राप्त करेंगे जीवन में वो उनके खून से सना होगा। सोचिए ना आप, अगर अजीब उदाहरण है लेकिन कोई आटा पराठे बना रहा है, कुछ आटा मान रहा है और उसमें पानी की जगह रक्त से साना जाए तो क्या उस पराठे को व्यक्ति खाना चाहेगा, चाहे कितना भी सुंदर दिखे? उसी प्रकार से अगर वो राक्षस नहीं है तो उसी प्रकार से अर्जुन कह रहा है कि भले ही हमको बड़ा सुंदर राज्य मिल जाए, सुख संपत्ति मिल जाए, लेकिन अपने ही गुरुजनों को मार करके उनके रक्त से सना हुआ राज्य प्राप्त करके हम कभी सुखी नहीं हो सकते। न चैत विद्मह कतरन्नो गरीयो यद्वा जये मयदिवानो जयेयुः याने वहत्वा नजजी विषामस्ते वस्तितः प्रमुखेदार्थ राष्ट्रः। हम ये भी नहीं जानते कि हमारे लिए क्या श्रेष्ठ है, उनको जीतना या उनके द्वारा जीते जाना। यदि हम धृतराष्ट्र के पुत्रों का वध कर देते हैं तो हमें जीवित रहने की आवश्यकता नहीं है, फिर भी वे युद्धभूमि में हमारे समक्ष खड़े हैं। अर्थात ये है कि अगर धृतराष्ट्र के पुत्र मार दिए जाते तो प्रायः पूरा समाज जो कौरव पूर्ववंश था वो प्रायः वो सब नष्ट हो जाता। तो आदमी जो भौतिक सुख भोगता है वो अपने ही रिश्तेदारों के बीच में भोगता है, अगर उन्हीं को खत्म कर दिया तो क्या भौतिक सुख व्यक्ति भोग करेगा? तो यही अर्जुन का यहाँ पे तर्क है। तात्पर्य अर्जुन की समझ में यह नहीं आ रहा था कि वे क्या करें, युद्ध करें और अनावश्यक रक्तपात का कारण बने यद्यपि क्षत्रिय होने के नाते युद्ध करना उसका धर्म है, या फिर वह युद्ध से विमुख होकर भीख मांगकर जीवन यापन करे। क्योंकि वो भी महसूस कर रहे थे इस बात को कि भीख मांगना ये कोई उनका कर्तव्य है नहीं। तो अर्जुन के बीच में धर्म और अधर्म का निश्चय करना ये वाली बात नहीं थी, कौन सा धर्म का पालन करे ये उनके लिए सोचना मुश्किल था। अधर्म में तो उनकी मति कभी जाती ही नहीं थी। यदि वह शत्रु को जीतता नहीं तो जीविका का एकमात्र साधन भिक्षा ही रह जाता है। फिर जीत भी तो निश्चित नहीं है क्योंकि कोई भी पक्ष विजय हो सकता है। यदि उसकी विजय हो भी जाए क्योंकि इसका पक्ष न्याय पर है, तो भी यदि धृतराष्ट्र के पुत्र मरते हैं तो उनके बिना रह पाना अत्यंत कठिन हो जाएगा। तो ये उनकी आसक्ति थी अपने भाइयों के प्रति, सौतेले भाइयों के प्रति। उस दिशा में यह उसकी दूसरे प्रकार की हार होगी, मतलब जिनके संग अपनी खुशियां बांटनी है अगर उनको ही मार करके हमें वो राज्य प्राप्त मिलेगा तो सुख क्या मिलेगा। अर्जुन द्वारा व्यक्त इस प्रकार के विचार सिद्ध करते हैं कि वे न केवल भगवान का महान भक्त था अपितु वे अत्याधिक प्रबुद्ध और अपने मन तथा इंद्रियों पर पूर्ण नियंत्रण रखने वाला था। नहीं तो प्रायः लोग अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए, थोड़ी सी इंद्रिय तृप्ति के लिए लोगों का गला काटने के तैयार रहते हैं, लेकिन यहाँ पे इतनी बड़ी इंद्रिय तृप्ति बाधित होती, उनका पूरा राज्य चला जाता, फिर भी अर्जुन युद्ध करने के लिए इच्छुक नहीं थे। राज परिवार में जन्म लेकर भी भिक्षा द्वारा जीवित रहने की इच्छा उसकी विरक्ति का दूसरा लक्षण है। ये सारे गुण तथा अपने आध्यात्मिक गुरु श्री कृष्ण के उपदेशों में उसकी श्रद्धा, ये सब मिलकर सूचित करते हैं कि वह सचमुच पुण्यात्मा था। इस तरह वह निष्कर्ष निकाला। एक और इम्पॉर्टेंट बात है कि जो व्यक्ति पुण्यात्मा होता है, जब उसको वैष्णवों का संग प्राप्त होता है तो उसके हृदय में श्रद्धा होती है कि ये लोग सही बोल रहे और उनकी बातों को स्वीकार करके अपने जीवन में अप्लाई करता है। और अगर पुण्यात्मा नहीं हो तो बड़ा मुश्किल है उसके लिए इस प्रकार से भगवान की बातों को स्वीकार करना। तो आप लोग कह सकते हैं अरे भाई हिप्पियों में क्या पुण्य था? पुण्य यही था कि प्रभुपाद की इच्छा थी कि वो भक्त बन जाए। अगर पुण्य ना भी हो तो भी शुद्ध भक्त के हृदय में अगर इच्छा आ जाती है कि लोग भक्ति करें तो फिर वो आगे जाके भक्त बन जाते हैं। इस तरह यह निष्कर्ष निकला कि अर्जुन मुक्ति के सर्वथा योग्य था। जब तक इंद्रियां संयमित ना हो ज्ञान के पद तक उठ पाना कठिन है और बिना ज्ञान तथा भक्ति के मुक्ति नहीं होती। अर्जुन अपने भौतिक गुणों के अतिरिक्त इन समस्त दैवी गुणों में भी दक्ष था। इसके बारे में आगे भगवान बोलते हैं कि तुम अर्जुन सभी दैवीय गुणों से संपन्न हुए हो, अभिजातस्य भारत, मतलब जन्म से ही दैवीय गुण तुम्हारे अंदर विद्यमान है। और इम्पोर्टेंट बात है कि अपने इंद्रियों को हम संयमित ना करें तो ज्ञान हमारा सारा ऐसा बह जाएगा जैसे एक लोटे में छेद कर दिया जाए नीचे से। तो लोटे में कितना भी जल दिया जाए लेकिन सारा जल उस छिद्र से बाहर निकल जाएगा। तो उसी प्रकार से हम लोग अगर भगवान की भक्ति करते हैं लेकिन अपने इंद्रियों को संयमित नहीं करते तो ज्ञान हमारा हृदय में उदित नहीं होगा। तो भोगों से बचाना है और साथ साथ भगवान की भक्ति करना है। तो इस ये दोनों को चीज़ हम जब करेंगे तब जाकर भगवान की भक्ति में हम सुदृढ़ हो पाएंगे। आगे का श्लोक लंबा परपट है तो उसकी चर्चा हम कल करेंगे। हरे कृष्णा।